तो उन्होंने इस अल्लाहनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रास लीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी जैसे भगवान की शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषय जीवन से पूर्णतया विरक्त है, भगवान की अल्लाहनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया। अभी तो उन संसारी लोगों के लिए जो विषय जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचित्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए विवेचन किया। संसार में विषय जीवन की मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण है, किंतु शुकदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषय जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, नहीं भगवान की अल्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, नहीं उन्हें नमन करने तथा प्रणाम करने देते थे। उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर के मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी नहीं सुनने चाहिए। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसे लक्ष्यों में प्रधान है, अतएव भगवान की अल्लादनी अल्लादनी है और कृष्ण से अभिन्न है। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संस्तुतियां की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी द्वारा की गई कृपाएं हैं, और लक्ष्मी के प्रति पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। फिर सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है, अतः विष्णु का अन्य नाम यज्ञपति भी है। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, यज्ञ अर्थात कर्मणः, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता है। अतः वे संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्कृत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को पूरा करना असंभव है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। भगवद गीता से हमें सूचना मिलती है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती, अंत तो गत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज में ही हो गई है और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वो कभी भी यज्ञ दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में ना करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए भगवान प्रजापति भी है। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक है, सारे जीव भगवान द्वारा पालित है, एको बहुनामे विदधाति कामा। इसलिए परम भगवान भूतवृत्त या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है, सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है। जैसा कि भगवद गीता में घोषणा की गई है, परमात्मा रूप में भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति की शक्ति प्राप्त होती है। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतः भगवान ध्यानपति अथवा बुद्धि के स्वामी हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भव बंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो भगवान की ही सृष्टि है, अतएव वे ही समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी हैं। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। यही ईशोपनिषद का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए, यह तो निरा पागलपन है जिससे वह भौतिक संपत्ति के दूसरे के हिस्से में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपने आहित की कृपावश अपनी ही शक्ति द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को अपने नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तो वे ये दिखा देते हैं कि उनमें भोगने की कितनी बड़ी सामर्थ्य है और वे भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके करते हैं। बद्ध जीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही अपने सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति है, लेकिन भगवान के वश को बद्ध जीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का सहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य पार्षद थे। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक थे, इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया। ओम ज्ञानति मिरांदर्श ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के शुकदेव गोस्वामियों के द्वारा जो की जा रही प्रार्थनाओं को सुनते आ रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कृपा की याचना करते हैं। पिछले श्लोक से हमने देखा वो कहते हैं, उससे पहले वो नमन किया करते थे, आपको नमस्कार है, अभी क्या कह रहे हो? भगवान प्रसीदताम, हे भगवान आप मेरे प्रति दयालु हो जाइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था। और आज के श्लोक में भी हाँ उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, भगवान सतामपति प्रसीदता में भगवान सतामपति। तो भगवान को शुकदेव गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं पति के रूप में। पति का मतलब ही है स्वामी, जो मेन अर्थ है, पति का मतलब ही है स्वामी। तो भगवान को अलग अलग पतियों के रूप में वो वर्णन करते जा रहे हैं कि आप ऐश्वर्य के पति हैं, यज्ञ के पति हैं, प्रजा के पति हैं, बुद्धि के पति हैं, पृथ्वी के पति हैं, और अंधक वृष्णि आदि के पति हैं, उन वंशजों की आप गति हैं। तो लेकिन फाइनली वो कहते हैं प्रसिद्धता में भगवान सतां पति है, हे कृष्ण आप क्या करो, मेरे प्रति दयालु हो जाइए, मेरे प्रति अपनी कृपा का प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आप भक्तों के पति हैं। पति का मतलब है स्वामी है। तो जैसे इस शब्द पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, कल भी हमने चर्चा की थी कि वास्तव में जीव को जो इस भौतिक जगत में बद्ध हो गया है उसको अल्टीमेटली इसी चीज को रियलाइज करना है, अनुभव करना है कि कृष्ण क्या है, प्रभु है, और मैं कौन हूं, एक तुच्छ सेवक हूं। इन दो चीजों को अनुभव करने के लिए वास्तव में हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकारते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को इसी चीज की शिक्षा देने के लिए अपने आचरण से सिखाया, उनके ग्रंथों के माध्यम से नाना प्रकार की सेवाओं को उन्हें उन्होंने प्रदान किया। किस लिए? कि केवल यह जो दास की जो भावना है वो हमारे हृदय में गहरी प्रकट हो जाए, क्योंकि हम हजारों हजारों जन्मों से हम एक भावना को अपने हृदय में लेकर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और कौन सी भावना है? हम सोचते कि मैं स्वामी हूं। उसी को ही भगवान गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। यह हमारा मोटो है, यह हम बनना चाहते हैं। ईश्वरोहम मतलब देखा जाए हम हर समय कंट्रोलर बनने की अभिलाषा से कार्यरत रहते हैं, चाहे अपने घर में क्यों ना हो। स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष को कंट्रोल करना चाहती है, वो स्वामी बनना चाहती है, और पुरुष अपने घर में ईश्वर बनना चाहता है कि सारे जो अनुयायी हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, पड़ोसी है, रिलेटिव्स है, वो मेरी क्या करे, उपासना करे, मुझे ईश्वर के रूप में मतलब भोगता हूं मैं। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो इस प्रकार से हम बलवान बनना चाहते हैं और सोचते हैं कि केवल भोक्ता बनने मात्र से, कंट्रोलर बनने मात्र से हम सुखी हो सकते हैं। इसी को ही शास्त्र कहते हैं पुरुष भाव। कौन सा भाव? पुरुष भाव या भोक्ता का भाव। इसी कारण से भक्ति का अभाव है। ये जो है ये भोक्ता भाव या पुरुष भाव सब में है, और यही मेन कारण है कृष्ण से द्वेष या ईर्ष्या करने का, क्योंकि कृष्ण को आध्यात्मिक जगत में हम रिप्लेस करना चाहते हैं। कृष्ण को क्या करना चाहते हैं? रिप्लेस। कृष्ण कहते हैं अच्छा बेटा मुझे रिप्लेस करना चाहते हो, रुको तुम्हें मैं राजा बना देता हूं। तो वास्तव में ये जानना कि हमारे बद्धता का कारण यही है। भगवान गीता में कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधयास्वरी मतः, कि जो दैवी गुण है वो इस जगत से हम मुक्त करा सकते हैं, लेकिन जो आसुरी गुण है वो हमें क्या करते हैं, बांध देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन हाँ संपदम दैवीं अभिजातोऽस्मि हे अर्जुन, लेकिन तुम्हारा जो जन्म है ना दैवी गुणों में हुआ है, हाँ क्योंकि तुम्हारी माता भी भक्त है, तुम्हारे पूर्वज भी भक्त रहे हैं और तुम भी दैवी गुणों को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। तो वास्तव में ये जो भोक्ता बनने की भावना, ईश्वर बनने की जो भावना है, यही हमारे बंधन के कारण है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद मोहेन भारत, भगवान कहते हैं हम सातवें अध्याय कि ये जो भोक्ता बनने की भावना से ही हम भगवान से ईर्ष्या या द्वेष करने लगते हैं। और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण को देखते हैं कि वो ही क्यों भोक्ता है, हम वो अकेले क्यों भोक्ता है, मैं भी भोग करना चाहता हूं, तो हम कृष्ण को रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसके कारण कृष्ण हमें जगत में भेज देते हैं। और यहां आने के बाद भी हम उसी प्रवृत्ति को और प्रोत्साहित करते रहते हैं अपने जीवन में। हाँ जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, उसी समय पौंडर नाम का राजा भी था, वो भी क्या बनना चाह रहा था, कृष्ण को रिप्लेस करना चाह रहा था। उन्होंने अपने दूत को भेजा द्वारका में, कृष्ण अपने सभा में थे, सुधर्वा सभा में, जहां उद्धव और सारे यदुवंश के जो सदस्य थे। ये दूत जाता है और कहता है कि मैं पौंडर जो असली वासुदेव है उनके द्वारा आया हूं, और आपसे निवेदन है कृष्णा, आप क्या करो, ये आपने जो छोटे मोटे चक्र आदि धारण किए हुए हैं, जो आश्र है, इनको छोड़ दो और इनके शरण ग्रहण करो, जो असली वासुदेव है। कौन थे वो? पौंडर। तो ऐसे पौंडर भी कृष्ण बनना चाह रहा था, ईश्वर बनना चाह रहा था, कृष्ण का स्थान लेना चाह रहा था। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या करो, मैं ये आश्रय छोड़ूंगा युद्ध स्थल में, लेकिन किसी के ऊपर छोड़ूंगा, आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, त्यागने के लिए तैयार हो। और जब उनका युद्ध होता है तो वास्तव में वो पौंडर बल्कि है नहीं, लेकिन नकल कर रहा था। वो आया युद्ध भूमि में अपने रथ आदि को, जैसे कृष्ण का रथ होता है जिसमें कपी ध्वज उनके अर्जुन के रथ पर है, लेकिन कृष्ण के रथ में रथ जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से रथ और जो जिस प्रकार से वासुदेव भगवान की वेशभूषा है वही धारण किए थे उन्होंने, पीताम्बर आदि, और दो हाथ एक्स्ट्रा लगा दिए थे, शंकर चक्र गदा पद्म, और युद्ध के लिए तैयार हो गए कृष्ण के सामने। किस कृष्ण देख के हंसने लगे, और कृष्ण ने भी अपने आयुधों को प्रकट किया था, आश्रम को प्रकट किया था, और ये चिल्लाने लगा हाँ कि तुम झूठे हो, तुमने झूठ मूठ के सब चीजें धारण की हैं, आप इसको छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने कहा तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूं, अभी अपने चक्र छोड़ा हाँ, और उसकी गर्दन को अलग कर दिया। तो मतलब में वास्तव में हम चाहे जितना मर्जी प्रयास करें भोक्ता या ईश्वर बनने का, कंट्रोलर बनने का, लेकिन असंभव है। वो उस समय था, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर के समय और भी एक भगवान बना हुआ था उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास, विश किशन उनका नाम था, वो खुद ही विष्णु कहलाते थे अपने आप को, और उनके दो शिष्यगण थे, एक को शिवजी बना दिया था और एक को ब्रह्मा बनाया था, और कई सारे राजा गण उनके प्रभाव में आ गए थे, और त्रिदेव का मंदिर बनाने जा रहा था, और जिसमें तीनों निवास करने वाले थे, और शाम के समय रास क्रीड़ा करते थे, रास लीला, जिसमें आसपास की गांव की सारी स्त्रियां रात को वहां चले जाती थी। बेचारे जो पति है खेत में काम करके जब शाम को आते थे, देखते थे सारे घरवाले गायब है, कुकिंग नहीं कुछ नहीं, वो कहां गई है, तो वहां गई हुई है, विश किशन जो भगवान बने हैं, विष्णु बने हैं, उनके वहां गई है रास लीला के लिए। तो ऐसे जब अंग्रेजों ने देखा कि ये बहुत अनुचित कार्य हो रहा है, तो लेकिन अंग्रेजों के पास वो हिम्मत नहीं था उसको ये करने, क्योंकि उसके पास कई सारी सिद्धियां थी, तो उन्होंने देखा कि एक ही व्यक्ति इसके लिए क्वालिफाइड है, वो थे ठाकुर भक्ति विनोद। भक्ति विनोद ठाकुर ये सारे अपसंप्रदायी और भोगी जो आचार्य या भगवान बने हुए हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए वो प्रकट हुए हैं एक प्रकार से। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जब गए वहां, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने साथ श्रीमद भागवतम को ले गए और हरि नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान की शरण ग्रहण करते हुए अकेले गए। अपने सारे पुलिस फौज को ले गए, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस, सबको ले गए। और वहां जाकर उसने कहा, आप चलिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वो मना कर रहा था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको पकड़ के ले आए और उसको पकड़ के लाकर पुलिस कस्टडी में डाला। और उसकी सिद्धियों के कारण भक्ति विनोद ठाकुर के घर में सारे लोग बीमार हो गए। इवन भक्ति विनोद ठाकुर का शरीर हाई फीवर से जर्जर हो रहा था, उनको चलना भी नहीं आ रहा था। उनकी जो बेटी थी छोटी सी, वो भी मतलब मृत्यु के शय्या पर लेटी हुई थी, मरने वाली थी। तो उनके पति ने कहा, ये सब छोड़ दो उसको। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नहीं इस तो इन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। जब भक्ति विनोद ठाकुर उसको उसके स्थान में मिले, तो उन्होंने कहा, आप स्वयं भगवान है तो चलो वहां जगन्नाथपुरी में चलो। वहां जगन्नाथ ऑलरेडी है भगवानों के, वो लक्कड़ के भगवान वो नहीं है, मैं उनका स्थान लेने वाला हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसको ले आते हैं, कस्टडी में डालते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, तो उस समय उन्होंने उसको शिक्षा दंड दिया, कई महीनों का जेल डलवाया। और फिर धीरे धीरे देखा गया कि डॉक्टर, एक डॉक्टर थे अंग्रेज, डॉक्टर वॉल्टर समथिंग, उन्होंने किसी बुक में पढ़ा था कि जो योगी होते हैं उनकी सारी जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उनके बालों में होती है, इसलिए लोग बड़े लंबे लंबे बाल रखते हैं। तो ये इसको जब ले जाया जा रहा था कोर्ट से, तो इन्हें कैंची लेके गए थे और ले जाते जाते उन्होंने उसके लंबे लंबे बाल को काट डाला। उसी क्षण वो जो भगवान बन गए थे अपने आप को, वो निर्बल हो गए और एक महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, भगवान शरीर त्याग कर दिए। तो इस प्रकार से मतलब अभी भी साउथ इंडिया में भगवान की मृत्यु हो गई रिसेंटली, एक दो साल हो गए नहीं, और एक भगवान। तो मतलब ये कल्चर हमेशा है, ये भगवान बनने का जो भाव है, पुरुष भाव है, वो हर एक जीव में है। और वास्तव में हम पुरुष नहीं है, जो पुरुष है वो भी पुरुष नहीं है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मेरी प्रकृति है, तटस्थ शक्ति है। तो वास्तव में हम पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष बनने का भाव को हम धारण करते हैं। और ये आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी गुण है। श्रील प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे, एक यंग लड़का उठा, हाँ मैं गॉड हूं, तो प्रभुपाद डरे नहीं। प्रभुपाद ने कहा, तुम गॉड नहीं हो, तुम क्या हो, डॉग हो, बैठ जाओ। नीचे बैठ गया। तो इस प्रकार से जो आचार्य है, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के, कि जो आचार्य है उसका एक कर्तव्य है, उसका एक ड्यूटी है। क्या ऐसे सो कॉल्ड बने हुए जो भगवान है, ढोंगी मिथ्याचारी है, उनका पर्दाफाश करना। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, जार जैसे नाचाय तैसे करे नृत्य। भगवान क्या, जिसको जैसा नचाएंगे उसको उसी प्रकार से नाचना पड़ेगा। एकले कृष्ण ईश्वर है और बाकी सब क्या है, नृत्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण, जीव का स्वरूप ही है। अब उस स्वरूप में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसे प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना, दास की भावना को अंगीकार करना, जो जीव से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यही जीव क्या बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, मालिक, स्वामी, भोक्ता बनना चाहता है, जो असंभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्वान यदि क्रियते राजा तत्किं नाश्नति उपानः। श्वान, श्वान मीन्स कुत्ता। कुत्ते को यदि राजा बना दो, सिंहासन पर बिठा दो और सामने दूर हड्डी दिखाई दे, तो कुत्ता क्या करेगा, दौड़ के हड्डी को चाटेगा। तो मतलब हम चाहे जो मर्जी बने, हम जितना मर्जी दिखावा करें, या हम कंट्रोलर बनना चाहे, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, दास है, सेवक है। जैसे हितोपदेश में एक कथा आती है, एक जाकल, जाकल को क्या कहते लोमड़ी, सियार, किधर नहीं सियार, हाँ सियार। आप मायापुर जाएंगे तो बहुत सियार है, शाम के समय में वो आवाज करके चिल्लाते रहते हैं। हम आ रहे थे बंसी भवन में तो पूरे गेट पर आ जाते थे, दस दस सियार, मंदिर में जाना डिफिकल्ट होता था। और वो एक ने आवाज करना शुरू किया कि बाकी सारे गाते रहते थे, भक्त लोग कहते महाप्रभु की कृपा है कि अपनी भाषा में क्या गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो जाकल है वो एक व्यक्ति का गांव में आता था शाम के समय में कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो एक दिन आया तो किसी व्यक्ति के घर में घुसा जो जाकल सियार, और घर में घुसा तो एक व्यक्ति डंडा लेके पीछे पड़ा, उसके डंडा लेके भाग रहा था, सियार आगे भाग रहा है। तो कोई एक साथ था जहां कलर के डब्बे पड़े हुए थे बड़े बड़े बैरल, ये दौड़ते दौड़ते किसी कलर के डब्बे में गिर गया, बाहर निकला तो अभी क्या हो गया था, उसका कलर टोटली चेंज हो गया था और दौड़ रहा था अपना जी लाइफ मुट्ठे में पकड़ के भाग रहा था, बचाना चाह रहा था। तो भागते भागते जंगल में घुस रहा था तो देखा, जंगल में घुसते घुसते उसने देखा कि उसकी ओर अलग दृष्टि से सब जो वन्य प्राणी है वो देख रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट दृष्टि, क्योंकि अभी क्या हो गया था इसका कलर चेंज हो गया था। उनको लगा कि ये कोई विशेष जानवर है और ये राजा हो सकता है हमारे पास, और कुछ नहीं। और इसने भी देखा कि हमारे स्थिति, हाँ उसने ये भी वैसा ही एक्शन करने लगा, उसी भावना को पुरुष भाव, स्वतंत्र भाव, भोक्ता का भावना, हाँ तो ये भी उसी भावना में चलने लगा। देखा कि शेर भी आके प्रणाम कर रहा है, हाँ सिंह भी आके प्रणाम कर रहा है, अरे थोड़ा सा उनको बोलता भी था, शेर लाके उसको खाने की चीज देते थे मार के, तो ये भी राजा की भावना में रुका हुआ था। लेकिन जैसे रात हो गई, लेकिन रात हो गई तो दूर से अभी सब लोग डरे हुए थे इससे और इसकी सेवा आदि में लगे थे, और ये भी अपने आप को भोक्ता समझ रहा था, कंट्रोलर, ईश्वर सारे वन्य प्राणियों का। लेकिन जैसे रात हो गई तो रात के समय दूर से एक सियार ने आवाज, रात होती तो सियार अपने आवाज निकालते हैं, लंबा चिल्लाते हैं, एक चिल्लाता है तो फिर बाकियों का स्वाभाविक निकलता है, वो दे कांट कंट्रोल, अपने आप को रोक नहीं सकते। तभी सबके बीच में बैठा था और फिर जब दूसरे की आवाज सुने तो इससे कंट्रोल नहीं किया गया, उठा अपने पंजे ऊपर किया और मुंह ऊपर करके जोर से ना चिल्लाने लगा सियार। तो सब लोग समझ गए कि ये कौन है, सियार है। तो वैसी हमारी स्थिति है, हम इस दास भावना को त्याग नहीं सकते, क्योंकि कंट्रोल में बन ही नहीं सकते। जितना मर्जी चाहे कुछ समय के लिए हम दिखावा करें, लेकिन वो जो कंट्रोल करने की जो भावना है वो हमसे छीनी जा सकती है, छीनी जा सकते नहीं, छीन लेते हैं जो भगवान है, प्रकृति जो बहुत कठोर है। तो वास्तव में हम कंट्रोलर नहीं है, भोक्ता नहीं है, पुरुष नहीं है। जिस प्रकार से आज का कल्चर है कि जो स्त्री है वो पुरुष बनना चाहती है, कॉम्पिटिशन है कि नहीं, और पुरुष भी पुरुष ही बनना चाहता है तो ऐसी स्थिति में चाहे जितना मर्जी स्त्री प्रयास करे कभी वो पुरुष बन सकती नहीं, उसका नेचर ही है स्त्री बने रहना, वो अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से हम सब का ये नेचर है सर्वण, तो उस प्रवृत्ति को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए कष्टकारक है। हम बाकी प्रभुपाद कहा करते थे कि इतना बड़ा ईश्वर या भोक्ता बनने की बात तो छोड़ ही दो, आप अपने इंद्रियों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कैसे कंट्रोलर हो। सुबह सुबह बाथरूम आपको जाना पड़ता है, यदि भीड़ हो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते अपनी चीजों को, अपने जो वेग है। प्रभुपाद ने कहा आप क्या हो, गोदास हो। इसी प्रकार से और वास्तव में हम इंद्रियों के दास है, बाहरी रूप से हम दिखावा कर सकते हैं कि बहुत बड़े कंट्रोलर हैं, लेकिन हम वास्तव में कंट्रोलर नहीं है। हम जैसे श्रीमद् भागवतम में राजा बचुपन वो कहते हैं कि देखो मैं तो इतना बड़ा कंट्रोलर ईश्वर राजा दिखाई देता हूं बाहरी रूप से। वो कहते हैं जब भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए राजा मुचुपन के सामने, तो राजा मुचुपन भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, उनकी प्रार्थना बहुत शिक्षाप्रद है दशम स्कंद में। वो कहते पुरा रतेर हेम परिष्कृते क्षण मतंग जयवा नरदेव संगीता सैव कालेन दुरतेन ते कलेवरो वीट क्रमी भस्म संगीता। जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाए हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है, वही बाद में हे कृष्ण आपकी काल शक्ति से किसमें बदल जाता है, मल में बदल जाता है, रात में बदल जाता है, कृमि कीट आदि में बदल जाता है। तो वास्तव में कैसे हम कंट्रोलर हैं? वो कहते हैं निर्जित्य दिक् अमभूत विग्रह वरासनस्थ समराज मंदिता ग्रहेश मैथुन्य सुखेश योषिता क्रीड़ा मृग पुरुष ईश नियते। उन्होंने कहा कि मैं जब जाता हूं बाहर और बड़े बड़े राजाओं को परास्त करके उनका धन आदि के साथ आता हूं, अपने राज्य में प्रवेश करता हूं, तो मेरे स्वागत में गीत गाए जाते हैं, पुष्प वर्षा आदि करते हैं, मेरे चरणों में हजारों हजारों महान महान राजा नतमस्तक होते हैं। जब मैं वापस आता हूं इतना भव्य है, राज सिंहासन पर विराजमान होता हूं, हाँ लेकिन देखो हे कृष्णा जब मैं ये भौतिक सुख मैथुन सुख को प्राप्त करने के लिए अपने स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता हूं, तो उनके चरणों के तलवे मुझे ताकने पड़ते हैं और मेरी स्थिति क्या हो जाती है, क्रीड़ा मृग पुरुष ईशनीय दे। हाँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं वास्तव में कंट्रोलर नहीं हूं, मैं क्या हूं, एक पालतू पशु के समान है। तो वास्तव में पशु कंट्रोलर नहीं होता, होता है क्या? नहीं, उसका एक स्वामी होता है। तो उसी प्रकार से शास्त्र हम इस चीज पर हम जोर देते हैं कि वास्तव में जीव जितना मर्जी भगवान को कॉपी करने का प्रयास करे, लेकिन उसके लिए असंभव है। इसीलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवत दासत्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि असली सुख उसका किसमें है, दास बनने में ही है, उससे बढ़कर नहीं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जान दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रक्षरा। उन्होंने कहा कितने प्रभु हैं, एक ही प्रभु है और उनका नाम क्या है, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। एक महाप्रभु आर दुई प्रभु दुई जन, दूसरे दो प्रभु कौन है, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रक्षरा, इतने बड़े बड़े प्रभु होने के बाद भी वो किसकी सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में सारे आचार्य हमें इस चीज की शिक्षा देते हैं कि भगवत सेवक या सेवा करने में ही वास्तव में क्या है, असली आनंद है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में इन श्लोकों का वर्णन आता है जिसमें किस प्रकार से जो अद्वैत आचार्य है, नित्यानंद प्रभु है, श्रीमती राधिका है, गोपियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, ये भी अपने आप को आनंदित गर्वित कब महसूस करती हैं, जिसका वो वर्णन करते हैं से अभिमान सुखे अपना पासरे कृष्णदास हो जिवे उपदेश करे। ये आचार्य या गुरु का असली कार्य है। तो अद्वैत आचार्य का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो अद्वैत आचार्य है वो भगवत सेवा सुख से इतना अधिक आनंद अनुभव करते हैं और वो सारे जीवों को एक ही उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, कृष्णदास हो, किसका दास बनो, कृष्णदास। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो अर दुख ना आए, केवल ये फेथ हो जाए, कन्विक्शन फुल्ली, क्या जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो अर दुख ना आए, बस। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, इसलिए दुखों की शुरुआत है। तो ऐसे अद्वैत आचार्य केवल सारे जीवों को एक ही शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहि तारहि कबिंदु। कृष्णदास किस भावना का इतना बड़ा आनंद है, समंदर के समान है, ब्रह्म सुख ब्रह्म में लीन होने का जो सुख है वो सुख एक बिंदु मात्र है। मोइज चैतन्य दास अरनित्यानंद दास भाव समन है अन्यत्र आनंद। वो कहते हैं कि मैं नहीं, नित्यानंद प्रभु भी किस भावना में आनंद ले रहे हैं, सेवा की भावना, दास की भावना, इस भावना से हम बढ़कर आनंद नहीं है। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसते तेहो दास सुख मागे करी अमिनती। इतना ही नहीं, अद्वैत आचार्य कृष्णदास कविराज कहते हैं कि केवल नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य भी नहीं, बल्कि जो श्रीमती लक्ष्मी देवी है जो भगवान के चरणों में सदा क्या करती रहती है, सेवा में मग्न है, और हमेशा यही मांगती रहती है कि मुझे दास भावना की जो सुख है वो मुझे प्रदान कीजिए, सेवा की भावना। दास भावे आनंदित परिषद गान विधि भवन आरतार सुख सनाता। इतने ही नहीं, इस दास की भावना, सेवक की भावना में जो ब्रह्मा है, नारद है, शुकदेव गोस्वामी है, सनातन है, शिवजी है, ये सब लोग भी आनंद अनुभव करते हैं। नित्यानंद अवधूत सबते आगल चैतन्य दास प्रेम है पागल। इन सब में भी नित्यानंद प्रभु सबसे आगे है, किस चीज में, सेवा, दास भावना में, भगवत सेवा, दास का टाइटल लेने में। हम दीक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें टाइटल लेना चाहते हैं ना, उपाधि, क्या ये दास, कोई दास। लेकिन वास्तव में जैसे मैं कह रहा था, श्रील प्रभुपाद ने लंदन में किसी जगह दीक्षा दिया, एक भक्त का नाम कुछ उन्होंने रख दिया, उसको पसंद नहीं आया, जो दास है, जो बेगर है वो चूजर नहीं हो सकता, दास को या भिखारी को जो मिले उसको स्वीकार करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो हम भी वास्तव में दास बनना नहीं चाहते, केवल टाइटल लेना चाहते, दास टाइटल मिलते हम प्रभु बनना चाहते हैं, हाँ, भक्ति में आने के बाद में है कि नहीं, हाँ, स्वामी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया और कुछ नाम दे दिया, सोचो आप ऐसे नाम दे दिया, परमात्मा दास, किसी को लगता नहीं ये क्या है, गौण नाम है भगवान का, मुख्य नाम होना चाहिए श्याम सुंदर दास, नो समथिंग कृष्णा का डायरेक्ट नाम होना चाहिए, ऐसे कुछ नाम दे दिया। बेचारा दीक्षा लेने के बहुत दुखी था, शाम के समय प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद हाँ मेरा नाम चेंज करिए। जैसे हमारे यार एक भक्त का दीक्षा हुआ था, वो भक्त उसका नाम महाराज ने रखा अयोध्या वासी दास। अभी वो सोचते हैं, अभी हम गौड़िया संप्रदाय में हैं, हम सब वृंदावन में कृष्ण का भजन करते हैं, कि अयोध्या वासी क्यों रखा। वो गया महाराज ने कहा तुम्हारा नाम आज से वृंदावन वासी वृंदावन वासी महाराज ने चेंज कर दिया। तो आज भी वो बहुत अधिक सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको नाम दिया, जो भी नाम दिया वो बहुत परेशान थे, शाम को गए प्रभुपाद मुझे ना ये नाम ठीक नहीं लग रहा है, आप चेंज करिए। प्रभुपाद ने वो आगे वाला नाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो पीछे जो लगा हुआ है ना, क्या दास, यू हैव टू रियलाइज दैट, आपको वो जो दास का टाइटल लगा है उसको अनुभव करो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दीक्षा के समय जो हमें वो टाइटल मिलता है। इसलिए इस सेवा की भावना में नित्यानंद प्रभु सबसे अधिक आगे हैं, उनसे आगे कोई और नहीं है। यही मत गायना छे करे अट्टहास, लोके उपदेश हो चैतन्य रदास। तो ये सारे जो महाप्रभु के भक्त थे वो सारे जगत को एक ही शिक्षा देते थे कि आप क्या बनो, चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण के दास बनो। तो इस प्रकार से इवन लक्ष्मी भी, सारे भक्त आदि भी, ब्रह्मा शिव आदि भी दास की भावना को अंगीकार करना चाहते हैं। इवन इतना ही नहीं, कृष्णदास कविराज कहते हैं, अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय, तार सम गुरु कृष्णेर आरक्य हनाय। इतना ही नहीं, वृंदावन में जो नंद महाराज है उनसे श्रेष्ठ कृष्ण के लिए कोई नहीं है, सीनियर, सबसे सीनियर है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नाही तार, तहां के प्रेम कराय दास अनुकार। फिर भी नंद महाराज भी भगवत सेवक बनना चाहते हैं, बल्कि वो भगवान के पिता है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सीनियर है, लेकिन फिर भी वो भगवत सेवा करना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत में आगे वर्णन आता है जिसमें कहते हैं, कृष्ण सख्य युद्ध करे स्कंदे आरोहण, तारा दास भाव करे चरण सेवा। इतना ही नहीं, जो वृंदावन के जितने गोप सखा आदि हैं कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या भावना है उनमें, कृष्ण का सेवा, कृष्ण के चरण आदि की हम सेवा में अपने आप को लगाते हैं। कृष्णेर प्रियसी ब्रजे जत गोपी गान, जार भद पद धुलि करे उद्धव प्रार्थना। इतना ही नहीं, वृंदावन की जो गोपियां हैं और जिनके चरण ब्रज प्राप्त करने की अभिलाषा उद्धव करते हैं, जा सबर उपरे कृष्णेर प्रिय नाही आन, तहारा अपना के करे दासी अभिमान। उन गोपिकाओं से श्रेष्ठ या भगवान को प्रिय और कोई नहीं है, ऐसी गोपिकाएं भी अपने आप को क्या कहती है, दासी अभिमान, हम दास है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज दास भावना को बताते बताते श्रीमती राधिका का वर्णन करते हैं। श्रीमती राधिका सभा है ते सकलांश परम आधिका। कभी इन सबका तो जाने दो, इन सबको छोड़ो, लेकिन अभी किसकी बात सुनो, श्रीमती राधिका की, जो वो सब में श्रेष्ठ है। ते हो जारा दासी है या सेवे न चरान, जारा प्रेम गुने कृष्ण बद्ध अनुक्षान। वही श्रीमती राधिका सदैव कृष्ण की क्या बनना चाहती है, दासी बनना चाहती है। हाँ, तो द्वारका की सारी रानियां भी भगवान की दासियां बनना चाहती है, इसलिए लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमा सेव्यमानम्। ब्रह्म संहिता कहता है कि लक्ष्मियां भी द्वारका में या वैकुंठ में भगवान की सेवा करती हैं, सेविकाएं हैं, और वहां का फर्श मार्बल सफाई करती हैं, बल्कि उसमें धूल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेव सर्व करना चाहती हैं, अपने आप को गर्वित महसूस करती हैं, हाँ, उनकी दासी की भावना में। इस प्रकार से बलराम भी भगवान के दास भावना में सर्वोत्कृष्ट है। हाँ, अनंत शेष के रूप में बलराम क्या करते हैं, सब चीजों में अपना विस्तार करते हैं भगवत सेवा के लिए, मृदंगा है, करताल है, अल्टर है, जो भी चीजें भगवत सेवा में यूज हो रही है वो किसका विस्तार है, बलराम का विस्तार है। तो इसलिए ये जो शिक्षा है ये चैतन्य महाप्रभु की महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपीर भरतर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो हमारा यही भावना होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें दास की जो ये जो पद है इसको मैं अंडरस्टैंड करूं, तो भक्तों के सेवकों का सेवक बनना है, और तभी वास्तव में हम असली सुख अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि जो मिरर है, मिरर में आप अपने आप को देखते हो, और मिरर में जो आप अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो उसको आप तिलक लगाओगे तो आपकी यहाँ माथे में तिलक नहीं लगेगा, लेकिन जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, अपने आप इधर तिलक लगाओगे तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, तिलक से विभूषित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दास तभी आनंद अनुभव करेगा जब वो अपने आप को स्वामी की सेवा में लगाएगा। हाँ, इसलिए हमें अनाथ नहीं बने रहना चाहिए। मास्टर का मतलब है अनाथ, हमें क्या बनना चाहिए? सनाथ। हमारा कोई नाथ होना चाहिए, मास्टर स्वामी होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हम वास्तव में किसी ने पूछा कि प्रभुपाद एक कंठी तुलसी माला क्यों पहनते हो आप लोग, किसी रिपोर्टर है किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट लाइक एक कुत्ता होता है, स्ट्रीट डॉग है, रस्ते का कुत्ता होता है, उसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, हाँ कोई भी उसको आगे मार के लात मार के पत्थर मार के भगा देता है, दयनीय स्थिति है। हाँ, लेकिन जिसके गले में पट्टा है तो पट्टा किसके हाथ में होता है? स्वामी के हाथ में होता है। तो वास्तव में परफेक्शन यही है कि हम किसी स्वामी के चरणों का आश्रय लें। हाँ, और स्वामी हमारे लिए कौन है? भगवान। भगवान मतलब कृष्ण, सताम पति, सताम का मतलब है भक्त, पति का मतलब है स्वामी। तो वास्तव में हम तभी आनंद महसूस कर सकते हैं जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे। प्रभुपाद कहा करते थे एक स्क्रू है, स्क्रू यदि मशीन से अलग हो जाए हाँ तो वो कोई वैल्यू नहीं उसका, लेकिन वो स्क्रू यदि जुड़ जाता है तो कितना वैल्यूएबल बन जाता है। तो उसी प्रकार से हम अनुभव करते हैं कि भौतिक जगत में हाँ जब आप कृष्ण भक्ति से जुड़ते तो कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं, लोग आपका आदर करते हैं, आपसे आदर से हरे कृष्णा बोलते हैं कि नहीं, प्रणाम करते हैं। भौतिक जगत में आप जितने बड़े बॉस हो, ऑफिस में कोई प्रणाम करता है क्या? नहीं। हाँ, ये विशेषता है, केवल कृष्ण से कनेक्ट जब हम होते हैं तो सारी चीजें बदल जाती है। इसलिए भक्त का यही गुण होता है, वो यही सदैव इस प्रार्थना में रहता है कि हे कृष्ण आप प्रभु हो और मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ शुकदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय कपटता से रहित है, प्रसिद्धता कृपा की याचना कर रहे हैं। कृपा जो मांगता है उसका मतलब है उसका हृदय आर्त, 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 आर्त का मतलब है दर्द भरी पुकार जिसको कहते हैं, मतलब उसका हृदय भरा हुआ है कष्ट से और कृष्ण को पुकारना चाहता है। इसमें दैन्य ह्यूमिलिटी हेल्पलेसनेस वो महसूस करता है जो भक्त है। इसलिए भगवान को कहते हैं प्लीज आप मेरे ऊपर क्या करो, कृपा कीजिए। और ये कृपा करने का जो भाव है एक उस छोटे बच्चे के समान है जो अपने माँ के लिए रो रहा है, और यही भावना शुकदेव गोस्वामी प्रकट कर रहे हैं। तो जब तक ये विनम्रता की भावना नहीं होगी, हाँ क्योंकि कृपा के लिए पात्रता की भी आवश्यकता है, और पात्रता क्या है? हाँ, वास्तव में यही भावना विनम्रता का भावना। हाँ, हम चैतन्य चरितमृत और सारे ग्रंथों में देखते हैं कि महान महान जो भक्त हैं हाँ इस दीनता को प्रकट करते हैं, दैन्य को प्रकट करते हैं उनके हृदय में। हम कृष्ण बहुत सरलता से उनके ऊपर हम कृपा करते हैं। तो आज के श्लोक का यही तात्पर्य है कि हमें जो पुरुष भाव है, भोक्ता भाव है, कंट्रोलर की भावना है, ईश्वर बनने की भावना है, उसको अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। और जो सेवक का भावना है उसको वृद्धिगत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम साधु शास्त्र गुरु का आश्रय लेते हैं, क्योंकि बारंबार जब रजो और तमोगुण बढ़ता है तुरंत ये भावना भी बढ़ जाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में हम सत्वगुण और शुद्ध सत्व का प्रभाव अनुभव करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, कृष्ण प्रभु है और मैं एक तुच्छ सेवक हूं। तो इसलिए भक्तों के संग में आना और श्रीमद् भागवतम आदि को श्रवण करना और भगवत सेवा में लगे रहना, उससे क्या होगा, ये जो सेवक का भाव है वो हमारे हृदय में बढ़ेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।